जो गोपियों का गोपियों के साथ में उद्धव जी का ये आदान प्रदान हुआ था एक भावों के देकर के, किसमें प्रारंभ से 14 या कितने श्लोक हैं
मेरे को धोरे रखते
हैं किसी को तो नाम नहीं था
प्रिया जैसे मेरा यहाँ से ग्रहण कर लें तुम्हारे परिचित जितने भी भक्त हों विशेष करके और जैसे छिले होते हैं चैतन्य दास आदि को मेरा आंतरिक स्नेह आशीर्वाद देंगे और स्वयं भी ग्रहण करें आपका तुम्हारे द्वारा भेजा हुआ 10 जून 1995 का पत्र मिला उसके समस्त समाचार ज्ञात हुआ साथ ही आज सवेरे 2 जुलाई को तुमसे फोन से भी बातचीत हो गई फोन से बातचीत करने से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ किंतु केवल मात्र कमल के छोटे भाई मृत्यु से दिल्ली में भी सबका मन खिन्न है और मेरा भी चित्त कुछ खिन्न हो गया किंतु इसमें कुछ करने का नहीं है भगवत स्मरण करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा पथ नहीं है हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उसकी सद्गति हो इस बार भारत यात्रा के दौरान उनको मेरे साथ हरि कथा सुनने का बहुत सुयोग प्राप्त हुआ तुमने इसकी उपलब्धि की है जानकर मुझे प्रसन्नता हुई यद्यपि तुम्हारा यह अंतिम वर्ष है और तुम बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है फिर भी हमारे कैसेटों का अनुवाद करना आरंभ कर दिया है यह बहुत ही उत्साहवर्धक है तुमको जितना समय मिले उसी के अंदर में ही तुम प्रयत्न करना मैं रामानंद के कैसेटों को सुविधा अनुसार में भेजने की चेष्टा करूँगा बेनुगीत छप गई है किसी प्रकार से सुविधा होने पर तुम्हें 10 प्रतियां भेजने की चेष्टा कर रहा हूँ अन्यथा एक तो पोस्ट के द्वारा भेजी दूं एक प्रति तुम्हें भेजने की चेष्टा करूंगा पीछे से तुमको और भी पुस्तकें भेज दूंगा श्री विग्रह को विग्रह का श्रृंगार करते समय श्री कृष्ण के मस्तक पर आवश्यकतानुसार तिलक बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है। अपना संप्रदाय तिलक हो तो और अच्छा ही है, नहीं हो तो केवल यू बना भी सकता है, और कभी कभी नहीं भी केवल सिर में मस्तक पर से जैसे तो क्या होता
हल्का
होता है सिर से कपोलों तक, वैसा बना भी सकता है, जैसे भी उनको सुंदर लगना चाहिए। भक्त प्रहलाद नृसिंहदेव के सिद्ध परिकर भी हैं, और दूसरी दृष्टि से प्रहलाद महाराज साधक भी दिखते हैं, क्योंकि वे एक पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण के लड़के थे, एक वेश्या के साथ में उनकी प्रीति हो गई थी, उसने इनका सर्वस्व अपहरण करने के बाद में इनको अपने यहाँ से भगा दिया, जिससे अपना प्राण त्याग करने के उद्देश्य से एक जंगल में चले गए। वहाँ पर घना घोर दृष्टि में बचने के लिए एक मंदिर में छिप गए, रात भर उस वेश्या के लिए तड़पते रहे, भोजन भी नहीं हुआ। उस दिन बाई चांस नृसिंह चतुर्दशी थी और नृसिंह जी का मंदिर, इसलिए वो पिछले जन्म में प्रहलाद महाराज को करते आए। यहाँ पर इस प्रकार से समझना चाहिए कि प्रहलाद महाराज नित्य होने पर भी कोई जीव तत्व भक्त प्रहलाद महाराज जी की के पूर्व जन्मों की भांति उनका साधन के द्वारा भगवान को पाया और प्रहलाद महाराज जी बने, अर्थात नित्य प्रहलाद महाराज में इनका प्रवेश हुआ। इस प्रकार से इसका सामंजस्य कर सकते हैं। ध्रुव साधक जी हैं, इनको सिद्ध परिकर के रूप में नहीं देखा जाए, क्योंकि उनके अंदर में सकाम भावनाएं हैं। दूसरी बात, आप मेरे प्रति श्रद्धा रख करके, आप मेरे प्रति अटूट श्रद्धा रख कर भी इस्कॉन तथा इस्कॉन के अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखना चाहते हैं, यह अच्छी बात है। जिसके द्वारा भगवान की तरफ आने का सुयोग मिलता है, उसे गुरु मानना ही चाहिए। केवल एक परिस्थिति है, यदि वो वैष्णव की गुरु की निंदा करते हैं और भक्ति पथ से दूर हो जाते हैं, तो ऐसे गुरु का पश्चात करने का विधान है। अतः मैं नहीं चाहता कि आप इस कौन को या अपने गुरु को छोड़ करके हमारे पास में, केवल मात्र हमें इसे ही श्रद्धा रखें। इसलिए अभी मैं दिल्ली गया था, बम्बई से लौटते समय तो मेरे मना करने पर भी वो सोमनाथ जी के घर पर मुझे रात 8:30-9 बजे के करीब में मिलने के लिए आए। 5 मिनट का समय लेकर के भी करीब करीब 1 घंटा तक मेरे पास में रहे और सब समय क्षमा कीजिए ऐसी बातें कह रहे। मैंने कहा इससे क्षमा करने की कोई भी बात नहीं है, अपने विचार से आप लोग चल रहे हैं वैसा चलिए, अपना धर्म पथ पर रहिए, हम अपना जैसा चलते हैं, इसमें कोई त्रुटि की बात मैं नहीं देखता। रही कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए, उससे बचने की चेष्टा करेंगे, जिससे कि वैष्णव अपराध न हो। विशेष करके रामचंद्र जी को अपने भक्तों की दृष्टि में जो गिराया गया है, आपने गिराया है, यह बात बहुत ही खराब है और भक्ति विरुद्ध है, इसलिए इस चीज को सुधारने की चेष्टा करेंगे। उन्होंने इसको स्वीकार किया। अतएव मुझे उसमें कोई भी बात नहीं है, तुम उनको श्रद्धा करते हुए ही हमारे प्रति श्रद्धा रखो। हमारा प्रेम, हमारा तुम्हारे जो स्नेह है वो स्वार्थ के, किसी भी स्वार्थ के बस नहीं है। तुम्हारा आत्मकल्याण हो, बस इसी के दृष्टि से हमारा स्नेह है। हो सकता है कि इस कोन वालों को तुमसे कुछ स्वार्थ हो, किंतु हमारा तुम्हारा, हमारा तुमसे कोई भी स्वार्थ नहीं है। केवल भगवत भक्ति की दृष्टि से ही मैं तुम्हें स्नेह करता हूँ। दूसरी बात, तुमने जो प्रस्ताव रखा है विवाह इत्यादि के संबंध में, मेरी समझ से अभी तुम तुम्हारा अंतिम वर्ष पूरा करो, इसके बीच में विवाह इत्यादि की कोई भी झंझट इत्यादि या चिंता मत करना। यहाँ आने पर जैसा होगा, बहुत से परिचित लोग हैं, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ आते ही जैसी स्थिति होगी वैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम भगवान का भजन में दृढ़ चित्त होकर के लगे रहो। अभी क्या ऑपरेशन, आँख के ऑपरेशन की बात तुमको फोन के द्वारा ही लिख दिया है। अभी तुम्हारी माता जी का भी फोन आया था, अभी कल धुंदा का भी एक फोन मिला। मैंने फोन से कमल की मैया से भी बातचीत की और उन्हें सांत्वना देने की चेष्टा की। यदि मैं दो चार दिन के अंदर मैं दिल्ली जाऊंगा तो उनके घर पर जाकर उनको सांत्वना देने की चेष्टा की। अभी क्या तुम बीच बीच में पत्थर देते रहो। सारी भजन परमा राजम से शिवगुरी पापद में अयुक्त की कृपा सारी चौंग भजन तुम्हारा 5-6-95 तारीख पर आ गया। सकल विषय तुम्हें हिसाब इत्यादि तैयार छो एवं तुम्हारे ओखने जाते संशोधित हमारे हिसाब का कागज नाम तक नीलाद्री द्वारा प्रेरित पाइया। तुम्हें वर्तमान होम्योपैथिक औषध सेवन करते थे ज्ञान में, प्रसंग वस्त पर बोलिया रखी हमी वर्तमान बम्बे गिया छिलाम, हमार चेकअप होइया छे, बस भालोई आछे, चोक है कैटरक पूर्ण होइया छिलो, डॉक्टर रात ता कथाई छे परामर्श दे, हमी सब रकम सुविधा एनु सेखन का बसंत ऋतु मसुन आब हवा देखिया एनु उच्च कोटि डॉक्टर
नैने को बोले दिलाम ओरा मुझे हमरा 20-25 जन आसु हमला
आसा দেখিয়া আমি সেইখানে 17 তারিখে 17 জুনে সেখানে অপারেশন করাইয়া দিল। আমি গত 10 তারিখে পৌঁছিয়েছি, 26 তারিখে এখানে পৌঁছিয়াছি, বেশ ভালোই আছি। কোনো রকম চোখেতে কোনো অসুবিধা নেই, কর্মে 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 ভালো হয়েছে। তবে এখানে বম্বে ঋতু অপেক্ষা এখানে কিছু সামান্য বর্ষা হলেও খুব তাপ মনে হইতে। এখানে গত 19 জুন হয়েছে, 1 তারিখ পর্যন্ত ভগবত কথা সমাপন হয়ে যাচ্ছে। এখানে বেশ সুন্দরভাবে বহু লোকের সমাগম হতে হইত, সম্পূর্ণ আঙ্গন নাট্য মন্দির ইত্যাদি ভরিয়া যাইত, শেষ দিনে বিরাটভাবে সমাপন উৎসব সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে। এখন আমার বক্তব্য যে আমি আবার কার্তিক মাসের পরে নভেম্বর মাসে বম্বে যাইব। তুমি যদি কার্তিক মাসে এখানে চলিয়া আসো তাহলে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি বম্বে ওই হাসপাতালে যেখানে আমার অপারেশন ইত্যাদি হইয়াছিল ডাক্তারকে দেখিয়া অনুসন্ধান করিয়া তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিব। যদি তুমি কার্তিক মাসে পূর্বে এখানে না আসো তাহলে তুমি যেখানে থাকো আমি তোমাকে পরবর্তীকালেতে ডেট জানাইব, ওই ডেটে অনুসারে আমি ওর দিকে বম্বে পৌঁছব, তুমি ওইখানেতে আমার অ্যাড্রেসেতে যেখানে অ্যাড্রেস দিব সেখানে পৌঁছিয়া যাইব। সেখানে তোমাকে কিছুদিন যদি থাকতেও হয় আমি থাকিয়া তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা ওখানে করব। তুমি এখনই থেকে এর প্রস্তুতি লইব। পূজ্যপাদ বামন মহারাজের কথা অবগত হইলাম। নদীপে ও কলিকাতার সমস্ত ভক্তগণ কুশলে আছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তারপরে কি কাশীনগরে নিখিঞ্জের ছোট ভাই প্রদ্যুম্ন অকস্মাৎ মৃত্যুর কথা জানিয়া পরলোক গমনের কথা জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত। এ বিষয়তে কিছু করবার নাই, তাহার আত্মার গতি হোক এই প্রভুর নিকটে প্রার্থনা জানাই। আর কি এখানে যদিও খুব একটু বর্ষা হয়েছে কিন্তু খুব অল্প, তাতে গরম কিছু বলতে আরো গরম কিছু বাড়ি। বৃন্দাবনে মঠে দুটি মঠে এখানে সমস্ত বৈষ্ণবরা কুশলে আছে, সব উৎসাহপূর্বক আছে। চন্দন দু একজনকে সঙ্গে লইয়া বিগ্রহ আনবার বিগ্রহ ব্যবস্থার জন্য অর্ডার দেওয়ার জন্য জয়পুরে গিয়েছে। শেষ কুশল মধ্যে মধ্যে পত্র ঢুকে আদরণীয় গীতা চ্যাটার্জি আমার স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ করবে। পত্র পাইয়া আমি আপনাদের চিনতে পারলাম, আপনার স্বামী মারা গিয়েছেন জানিয়া দুঃখিত। যা হোক আপনি মথুরাতে আসলে মথুরা অথবা বৃন্দাবনে আপনার থাকবার ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। তবে আপনি শ্রাবণ মাসের সময় ওই সময়তে আসলে ভালো হয়, ওই সময় বৃন্দাবনেতে মথুরাতে খুব উৎসব ইত্যাদি হইয়া থাকে, সব জায়গায় ঠাকুরের দর্শনও ভালো পাওয়া যায়। ওই সময় ঝুলনের সময় আপনি কখন আসবেন আমাকে জানাইবেন। আর একটি কথা, আমি প্রায় রাজৌরি গার্ডেনেতে যাই, আপনি ফোন নম্বর দিয়া দিলে আমি দিল্লিতে গেলে আপনার সঙ্গে ফোনেতে আমি কথা বলেছি। অতএব এই পত্রেতে আপনি আগামী পত্রেতে আপনার ফোন নম্বর এবং অ্যাড্রেস
অ্যাড্রেস
আছে ফোন নম্বর আপনি আমাকে জানাইবেন, তাহলে আমি কথাবার্তা আপনার সঙ্গে ওইখানে বলব। আমি হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই দিল্লি যাব। আপনার আপনি আমার স্নেহাশীর্বাদ জানবেন। আপনার পত্র পাইলাম, সব কুশল সংবাদ অবগত হইলাম। আপনি কলিকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন না জানিলাম। আমিও ওখানে গিয়েছিলাম কিন্তু ব্যস্ত থাকার জন্য আপনার কোনো সংবাদ লইতে পারি না। যাই হোক আপনি আমি ইত্যাদি বাঁচিয়ে দিয়েছি জানিয়ে আনন্দিত হইয়া কি হয়েছিল তা কি হয়েছে
ডান পায়ে আঘাত লেগে
আপনার ডান পায়ে আঘাত লাগিয়েছে জানিয়া চিন্তিত রইলাম আপনি জানাবেন বর্তমানে আপনি কিরকম আছেন আমি বোম্বে গিয়েছিলাম চেক আপের জন্য সেখানে চেক আপ করিয়া ডাক্তার ভালোই বলিয়াছে ভালোভাবে চলছে তবে আমার চোখে ডান চোখের ক্যাটারাক্ট অপারেশন হয়ে যাচ্ছে আমি এখনো 15 দিন হইয়াছে মনে হইয়াছে বেশ ভালো হইয়াছে কিছুদিন আর সাবধানীপূর্বক থাকতে এখানে যদিও একটু সামান্য বর্ষা হয়েছে তথাপি এখানে খুব গরম বোম্বেতে একেবারে বসন্ত ঋতু মতন বেশ সুন্দর এখানে শ্রীমদ্ ভাগবত দ্বাদশ দিন হইয়াছিল বহু লোকের সমাবেশ ইতিমধ্যে হয়েছে মঠে ব্রহ্মচারী সব লোক কুশলে আছেন মধ্যে মধ্যে আপনি পত্র দিবেন শ্রীপাদ বৈষ্ণব মহারাজ অনেকদিন তোমার কোনো পত্র পাইনি আশা করি পরমারাধ দশম শিশুল গুরুদেবের কৃপা ভাইপুকি কৃপায় তুমি এমন মাঠবাসী সকলেই কুশলে আছো বর্তমানে তুমি কিরকম আছো মঠ কিরকম চলছে জানাই আমি বোম্বে গিয়েছিলাম চেক আপের জন্য সেখান হইতে 26 জুনে এখানে ফিরিয়াছি মোটামুটি ভালোই আছি তবে আমার চোখে ক্যাটারাক্ট হইয়াছিল তাহা 17 জুনেতে অপারেশন করাইয়াছি অপারেশন বেশ ভালো হইয়াছে তবে এখনো কি 1 মাস পর্যন্ত সাবধানীপূর্বক থাকতে মধ্যে মধ্যে তোমরা কুশল জানাইলে আমি আনন্দিত বর্তমানে আসামের কি পরিস্থিতি তাহাও জানাই বিষ্ণু মহারাজ আশা করি এরকম লিখে জমা হবে এখন থেকে চেষ্টা করবো লেখার জন্য যদি পাওয়া যায় যাতে নিয়ে আসে নাই এমনি তোমরা পরিক্রমা এখানে আসবে 1 মাস ধামপন করা হরিকথা ইত্যাদি তেমন শুনি মুরারি
প্রিয় কৃষ্ণ মুরারি
আপ মেরা স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ করেন আপনার পত্র 16/6/95 কা মিলা পড়কর অত্যন্ত আনন্দিত হুয়া আপ মেরে শিক্ষা কে অনুসার মে নিয়মিত রূপ মে শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবান কি সেবা মে আর ভগবত ভজন মে লগাতে হ্যাঁ জান করকে বহুত হি প্রসন্নতা হুই मैं समय अनुसार मैं जयपुर में आऊंगा तब उस समय आपसे वहां पर भेंट होगी अभी मैं बम्बई गया था वहां आँख का एक ऑपरेशन किया अभी 1 महीना उसमें सावधानी से रहने की आवश्यकता है आप इसी तरह से श्रद्धापूर्वक भगवत भजन में लगे रहेंगे तथा अपने घर का काम भी अच्छी तरह से करते रहेंगे अभी क्या गोविंद जी आपकी भक्ति को ठीक रखें यही उनके चरणों में प्रार्थना
जय गोपाल
जय गोपाल ये जो भक्ति जय गोपाल
बोलो
हमारे स्नेह की बात ध्यान कर दे हमारे 195 तारीख पत्र पाई आई ताते सफल संवाद अवगत है ना আমি নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার সময় তোমাকে দেখিয়াছিলাম কিন্তু বিশেষ কথা তখন হয় নাই মনে করিয়াছিলাম পরিক্রমা পরে তোমাদের সকলকে নিয়ে আমাদের কমিটির মেম্বারগণের সামনে কথাবার্তা বলিয়া তোমাদের কি সুবিধা অসুবিধা আছে জানিয়া তাকে সামঞ্জস্য করবার জন্য চেষ্টা করিবে আমি মনে করেছিলাম যে তুমি বিনা আমার সঙ্গে দেখা করিয়া তুমি কিছুতেই যাইব না, যাইবে না। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলাম যে তুমি আমার সঙ্গে দেখা না করিয়া তুমি পূর্ণিমা থেকে পূর্বেই তুমি না জেনে কোথাও চলে যাবে। কোথায় যে তুমি আছো যে তোমাকে পত্র দিব তাও আমি উঠি ঠিক করতে পারলাম না। আমার ইচ্ছা ছিল যে তোমার সঙ্গে আমার কোনো আলাপ হলে ভালো হয়। যা হোক, তুমি পত্র দিয়াছ, কিন্তু মনে হয় তুমি ভুল করছো। তোমার যদি এইরকম ছিল তাহলে নদীতে থাকতে, অথবা তুমি আমার এইখানে তুমি চলিয়া আসতে। তুমি তা না করে গুরুপাদ পদ্ম আশ্রয় করিয়া শুদ্ধভাবে আবার তুমি এদিকে দিকে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছ। যদি তোমার বিরুদ্ধে ওই কোন জায়গা ধুবড়িতে কেউ কিছু বলেছিল অথবা করেছিল, আমি তাহাকে শাসন করতাম, কিন্তু তুমি নিজে মঠে মঠ ছেড়ে দিয়ে আর তুমি চলে গেলে, এটা তোমার উচিত হয়। আমার মনে হয় যখন তুমি সদ্গুরু পদাশ্রয় করিয়াছ, আমি স্বার্থভাবেতে আমাদের সকলেরই তোমার প্রতি প্রীতি রয়েছে আর তোমার ভজন করবার একান্তিক ইচ্ছা, তাহলে তোমার সমস্ত স্বতন্ত্রতা ছেড়ে দিয়ে তোমার গুরু পাদ পদ্ম অথবা আমরা যা বলি তদ অনুসারে তুমি ভজন করলে ভালো। যদি ওই ওইখানে মঠেতে রাজনীতি ইত্যাদি ছিল, কিন্তু আমার এখানে যখন এসেছিল ওখানে কি রাজনীতি ছিল? অতএব তুমি যৌতিক স্বতন্ত্রতা বাদ দিয়ে তুমি যদি হয় তাহলে মথুরাতে তুমি চলিয়া চলে এসো। এখন এখানে বর্ষা আরম্ভ হয়েছে, এখন কোনো বিশেষ তাপ নাই, এখানে কিছুদিন থাকো, তারপরে তোমার ইচ্ছা অনুসারে যে কোনো মঠেতে আমরা তোমাকে অথবা নদীতে থাকবো, অথবা তোমারকে মঠের রক্ষক করে আর আমাদের ধুবড়িতেই তোমাকে রেখে দেবো। এবং তোমার যারা বিরোধ করছে তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়েছি। অতএব এই বিচার করে দিয়ে তুমি একান্তে কোথাও অলগ না থেকে তুমি তোমার গুরুপাদ পদ্মে অথবা আমার নিকটেতে এখানে মথুরাতে তুমি চলে, অথবা তোমার নদীতে থাকতে সুবিধা হয় তাহলে ওইখানে থাকবে, পরবর্তীকালে তুমি যেরকমভাবে বলবে সেরকম দেখে শুনে। অধিক তোমাকে আমি কী বলি, ভগবান তোমার মঙ্গল বিধান করুন, বহু সুন্দর তোমাকে কৃপা করুন। প্রিয় নবদ্বীপ দাস, মেরি আন্তরিক মেরে হৃদয় কি আন্তরিক হৃদয় কা আন্তরিক স্নেহ আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। আপনি 28/6/95 তারিখ কা পত্র কোথায় দিব? সব সমাচার জানকর, সমাচার জানকর বহুত হি আনন্দিত হুয়া। শচী দেবী কে লিয়ে ভী মেরা কহ দেনা, আপ অনাথ নিরাশ্রয় অর পতিত নেই হ্যাঁ, ভগবান কি আপ অহেতু কি কৃপা, আপকো বৃন্দাবন মে ধাম মে স্থান দিয়া, আপ কর্মশ রাগানুগা রূপ গোস্বামী কে রাগানুগা ভজন মার্গ পর অগ্রসর হো রে, সমস্ত গ্রন্থো কা প্রকাশন কর রহে হ্যাঁ, ইসিলিয়ে মে আপকো বহুত হি স্নেহ অর আদর করতা হুঁ। আপ জেসে পরিশ্রমী এবং একান্তিক শ্রদ্ধালু ভক্ত কো পাকর বহুত হি প্রভু কো বহুত ধন্যবাদ দেতা হুঁ। আপকে দ্বারা বহুত সে কার্য করনে হ্যাঁ, और भक्ति ग्रंथ का प्रचार करना है, आप इसके लिए तैयार रहेंगे। मैं समझता हूँ कि आप अभी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान से आप पोलैंड हॉलैंड में आप पहुँच गए हैं। मुझको इसकी सूचना बजनाथ प्रभु जी से मिली। मैं समझता हूँ कि ये लौटने पर आपसे वहाँ पर भेंट होगी। भक्ति स्वामी सिंधु बिंदु का अनुवाद समाप्त हो गया है और आपने तीर्थ पद प्रभु को वो संशोधन के लिए कॉपी दे दी है, जानकर के आनंदित हुआ। मनुष्य शिक्षा के हिंदी और बांग्ला संस्करणों को ध्यान के रूप में आपने पाठ किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मनुष्य शिक्षा का अनुवाद भी आप देख करके और उसे सुधार करके अच्छी तरह से उसे ठीक कर लीजिए। इसलिए मैं उठा कुठा के कॉपी का पहले एक कॉपी तो के दिए
ब्रजनाथ।
मैं ब्रजनाथ प्रभु जी के साथ में उस कॉपी को जानकी जी से लेकर के आपके पास में भेज रहा हूँ। उसमें जैसा हो आप चेक करके उसमें एडिशन अल्टरनेशन क्या एडिशन
संशोधन
और परिवर्तन इत्यादि सब कुछ कर सकते हैं। अभी क्या मैं आपकी सर्वांगीण उन्नति और भजन विषय में उन्नति की कामना करता हूँ। श्री गुरु गौरांग अनुराधा विनोद बिहारी जी आप पर विशेष रूप में कृपा करें। आप बीच में पत्र मुझे दें।
कितना ग्राम ऊपर से नहीं देता उसमें आप चुप रहे और इस समय उसका पक्ष लेकर के लड़ने आए, बस उनको याद आए। उन्होंने कहा बस गदा छोड़ दिया और मन ही मन में कृष्ण को प्रणाम करके फिर यात्रा पर निकल गए। ये कृष्ण की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, जगत भी कृष्ण की इच्छा से ही चल रहा है। अभी जो कुछ हो रहा है कृष्ण के हाथ में बागडोर है, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही जगत चल रहा है। हम समझते कि मायावती का राज्य है, पहले मुलायम सिंह का था, ये नितिन का राज्य का है, ये किसका है, ये अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, ये सब था नहीं। उन्होंने थोड़ी सी बागडोर फिर कर रखी है, जो कर रहे हैं कृष्ण, सब कृष्ण के हाथ में। कलयुग को भी सब कुछ देना चाहिए, इसलिए उसको दे करके बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोग कलयुग से दूर रहेंगे और दूर रहेंगे, कैसे दूर रहेंगे इस कथा के सुनने से, केवल सुन करके। यहाँ से जाते समय में आरती होने के बाद में जब उतर हैं तो ये मत करिए कि मैं हरि कथा को यही छोड़ करके मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ये अंततः मत करिए। मैं इस कथा को अपने विधायक कानून को लेकर के जा रही हूँ या जा रही हूँ, और इसका पालन कर और सबका पालन करने की चेष्टा निरंतर भगवान का नाम कर। जो जो लीलाएं कथाएं यहाँ पर सुनी है बस इसका चिंतन करूंगा, घर का काम करेंगे करेंगी किंतु साथ साथ में लीलाऊंगा, भगवान का नाम का स्मरण करके। तब तो कलयुग नहीं आएगा, तब कृष्ण सामने रहेंगे, और जिस समय ये नहीं स्मरण करेंगे समझो ये बात की खाती कलयुग पकड़ लेगा। इसे प्रस्थापना पढ़ा ही कठिन है, बहुत कठिन है। बड़े बड़े समझदार लोग ऋषि मुनि लोग इस माया में फंस गया। बलदेव जी आगे चले नहीं कारण नहीं मिले, वहां पर पुराणों की कथाएं चल रही थी, 60,000 ऋषि लोग की 88,000 ऋषि लोग हरि कथा सुन रहे हैं, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा उसमें हैं। बलदेव जी पहुंचे, सब लोगों ने उठ करके उनका अभिवादन किया, सब लोग उठे, सब लोगों ने हाथ जोड़ करके आप उनको ले गए। किंतु वहां पर जो बैठा हुआ था भागवत का वक्ता सुख गोस्वामी लोमहर संतु, अर्थात भगवान की कथा कहने में कभी कभी रोते तो खड़े हो जाते हैं और फिर जब कथा खत्म हो गई तब कुछ नहीं। अथवा जो वहां पर बैठे थे श्रोता है उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऋषि, उन ऋषियों को ये सम्मान नहीं देता। बलदेव जी खुद वहां पर आए, विश्व के गुरु हैं, कृष्ण के भी बड़े प्रज्ञा हैं, अखंड गुरु तत्व बलदेव जी हैं, भागवत के मूल वक्ता यही बलदेव जी हैं, और उनको उसने प्रणाम नहीं किया, अभिमान में बैठा रहा। यहां तक भी नहीं कि कुछ प्रतीक्षा करें, बलदेव जी आए उनको एक माला दे दें, वो अपने आसन से युक्त करके अभिवादन करें, ये भी नहीं किया। इसलिए उन्होंने देखा जैसे ये अधिकारी नहीं है पास का, ये व्यक्ति तो श्रवण किया ही नहीं, व्यास का शिष्य बनता है किंतु व्यास का आश्रम इसने ग्रहण नहीं किया। नारद जी को व्यास जी ने जैसे सम्मान दिया ऐसे ही अपने गुरु को सम्मान देना नहीं जानता। इसे जो गुरु को सम्मान नहीं दे सकता है, जो आचरण नहीं कर सकता है, वो वक्ता भागवत का वक्ता होने योग्य नहीं है। बस गले में हाथ ऐसे लगाया, उसका कट करके अलग। सब ऋषि लोग जो बैठे थे सब लोग हाहाकार करते, आइए आपने क्या कर दिया। जब हाहाकार करने जब करने लगे तो बोले बतलाओ तो क्या चाहते हो, मैं कुछ भी करके बैठा दूं कि नहीं प्रभु ऐसा आप जो पद चाहते हैं कि तो हमको भागवत कथा सुनना है, हमें भागवत कथा बंद करना होगा। उसका एक बेटा था छोटा सा, और एकदम छोटा 5 वर्ष से भी छोटा, उसका प्रवासित नाम था, उसको लेकर के उन्होंने उठाया गोदी पर और उठा करके व्यास आसन पर बैठा दिया और कहा तुम्हारी समस्त जितनी विद्याएं हैं वेद मंत्र शास्त्र भागवत इत्यादि सब तुम्हारे अंदर में स्फूर्ति हो जाए, सचमुच में समस्त उसके हृदय में स्फूर्ति हो, बोले भागवत का पाठ करो। बसुन करो के भागवत का पाठ और प्रवचन दे, यही जो उग्र सभा उग्र सभा सीखे थे। इसके बाद में जब परीक्षित महाराज की सभा हुई, सुखदेव गोस्वामी जी भागवत उसमें व्याख्या कर रहे थे, तो वह बड़ी श्रद्धा के साथ में जाकर के उनके चरणों के समय में बैठा हुआ सब सुन रहा था। यही भागवत का पीछे से प्रधान वक्ता हुआ। इस तरह से भागवत का श्रवण करने का अधिकारी कौन है, जिसके पास में श्रद्धा है और भागवत की कथा को सुन करके भागवत में जो लिखा है जैसे उसको मानने वाला ही भागवत का श्रद्धा पूर्वक सुनने वाला अधिकारी। यदि कोई व्यक्ति भागवत 12 दिन सुन लिया भी, कहे आपकी कथाएं हमारे सिर पर है, मैं तो गणेश जी शंकर जी दुर्गा जी और कौन कौन देवी हैं, कंकाली जी हैं, संतोषी मैया है, मैं उनको कैसे छोड़ूं। आपकी कथा भी ठीक है किंतु हमारी मैया और सबकी पूजा देवता देवी सब 12 महीने में 13 पर्व और 360 दिन में 300 पूजन पाजन ये सब ठीक है, तो भागवत का श्रवण कहां है। सर्वधर्मान कर्तव्य ये काम हुआ जो कृष्ण का वर्णन कर, इसलिए भागवत को ऐसा ये कृष्ण ही राधा जी हमारी हमारे गिरिराज जी जिसकी पूजा कृष्ण ने स्वयं की वो हमारे आराध्य है, जिसकी पूजा कृष्ण ने और गोपियों ने की वो यमुना जी जिसने कृष्ण ने विहार किया है यमुना जी हमारी आराध्या है। ये सब मान करके हमको चलना पड़ेगा तब हम समझेंगे हम भागवत सुना, और यदि नहीं करते तो ये समझेंगे हम एक मनोरंजन था 10-12 दिन कट गया आराम से कुछ सुन लिया बहुत, किंतु भागवत की कथा सुनने के लिए और वक्ता और श्रोता दोनों को एक वक्ता है बड़े वक्ता MA PhD है, भागवत की कथा बड़े सुंदर रूप से करते हैं, भाषा भी बड़ी रंजक, किंतु इनकी इष्ट देवी कंकाली जी है, वृंदावन में बैठ करके यमुना के किनारे कंकाली जी की वो पूजा करते हैं। यह भागवत का वक्ता का यदि हाल हो तो श्रोता का क्या हाल हो। इसलिए आप लोग सबके देवताओं के भी आराध्य समस्त अवतारों के जो मूल अवतारी हैं कृष्ण का भजन करेंगे, यही भागवत श्रवण का ये फल है। बलदेव प्रभु जी क्या यही अभिप्राय है, बलदेव जी जब ये सब करते थे जब द्वारका में पहुंचे तब तो महाभारत युद्ध इत्यादि समाप्त हो गया है, कृष्ण भी वहां पर आ गए थे एक दिन अपनी प्रयासियों को लेकर के, अपनी पत्नियों को लेकर के बागली और कौन गणपति जी को और उनकी सहेलियों को लेकर के पर्वत के पास में कहीं वन में गांव की प्रतीक्षा कर रहे थे। दिलीप नाम का एक बंदर आया, पहले बड़ा अच्छा था, रावण के युद्ध में राम की बहुत सेवा की, किंतु लक्ष्मण जी को देखना नहीं चाहता, उनकी निंदा किया। राम को मानते हैं लक्ष्मण जी को नहीं, लक्ष्मण जी को मानते हैं राम को नहीं। ऐसा यदि कोई करे, राधा जी को मानते हैं कृष्ण को नहीं, कृष्ण को मानते हैं राधा जी को नहीं, ऐसा करने वाला पाखंडी। तो वो दिलीप बंदर राम की सेवा करता था, युद्ध किया, किंतु अंत में लक्ष्मण जी का विरोधी होने के कारण राम के विरोधियों का संग करने लग गया। कृष्ण की लीला समाप्ति के बाद में काल जमन जरासंध और सब इनके साथ में रहने लगा, कंस इत्यादि के साथ में रहने लगा, बुद्धि विकृत हो। अच्छा व्यक्ति भी जब ये दूसरे व्यक्तियों का संग करेगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। यहां तक कि दूसरे लोगों का विषय लोगों का अन्न खाने से भी चित्त मलिन हो जाता, फिर भगवान का भजन नहीं होता, तामसिक शरीर हो जाता। इसलिए दुष्ट लोगों के यहाँ भिक्षा करना या दुष्ट लोगों से आदान प्रदान करना, दुष्ट लोगों का अन्न खाना चित्त को भ्रष्ट कर देगा, चाहे वो गृहस्थ हो और चाहे वो क्या। इसलिए देख सुन करके किसी का अन्न खाएंगे या खाएंगे, किसी को खुश रखने के लिए उसका अन्न खा लिया, जरूर चित्त भ्रष्ट हो जाएगी, भगवान का भजन नहीं होगा। दीदी जैसा किया यहाँ सती घोर उसमें बलदेव जी का भी विरोधी होगा, क्योंकि बलदेव जी वही लक्ष्मण जी है, वो जानता है बस उनका विरोध करने लगा, जानता है उनका विरोध करता। अंत में आज उसको मौका मिला, जंगल में अकेले बलदेव जी को स्त्रियों के साथ में देखा, वो नंगा तो सारी वही जंगलीपन का काम करने लगा, उनको चिढ़ाने लग गया। बलदेव जी को क्रोध है, अरे देखो तो ये भगवान का विरोध कर रहा है, समझता है इसका, इसको आप बंद करना चाहिए, जिससे ये और अधिक पाप काम न करे, अपराध न करे। इसलिए वो पेड़ पर ही अपने हल को लेकर के उसका मस्तक लगा दिया और फेंक दिया, और दूसरों से ऐसल मारे, बस वही उम्र करते थे। बलदेव जी गुरु तत्व हैं, बलदेव जी को बलदेव जी की कृपा नहीं होने से कृष्ण की कृपा नहीं हो सकती है, इसलिए ये बलदेव जी की कृपा होनी चाहिए हमारे ऊपर। यहाँ सब तो दशम स्कंध समाप्त हुआ, शायद ये कथा हमारे शिवानंद ब्रह्मचारी जी ने नहीं कहा होगा, इसलिए हमने इसको संक्षेप में बताया। आप लोग इन सब चीजों को ठीक से हृदय में धारण करें, आप लोगों का कल्याण होना है, आप लोग संसारिक वस्तुओं में मत फंसिए, कर्तव्य के लिए जो चीज की आवश्यकता है तो उसको ग्रहण कीजिए, किंतु भजन करें राधा कृष्ण का ही, यही भागवत बार 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 ये कह रहा है। दूसरी बात, लोगों को शंका होती है, द्वारका लीला के अंत में वो जगवंशियों का खंड हो गया और फिर सब लोग मारे गए, और कृष्ण के भी पैर में बांध लगा, वो भी मर गए, उनका संस्कार वहां पर हुआ। यहाँ पर आज सोमनाथ जी का मंदिर है, वहीं पर पासी में एक पेड़ के नीचे कृष्ण बैठे हुए थे और एक बहेलिए ने उनको बाण मारा, वह बाण कौन सा था, वह भी सप्तर ऋषियों का सप्तम मूसल से बना हुआ, कैसा। जब उच्च घराने में किसी का जन्म हो जिसके माता पिता खूब धार्मिक हो, किंतु उसके घर में भी दुष्ट लोग हो सकते हैं, जिस प्रकार से परम वैश्य दानव जो थे हिरण्यकश्यप उनके घर में आए प्रहलाद महाराज, और प्रहलाद महाराज जी का बेटा कैसा हुआ, विरोध, और विरोचन का बेटा कैसा हो गया, अभी महाराज भक्त हो गए। ऐसा होता तो आप लोग सावधानी के साथ में उसके घर में आने पर माता पिता के भी धार्मिक हो, उनकी धार्मिक प्रवृत्ति को सीख करके और वैसे ही चलने की सीख करें। तो कृष्ण के कुल में जब बंसी लोग आए, कृष्ण ने जो भाग धारण करके महाभारत के युद्ध में सब जितने अतताई थे दुष्टों का जो दल था उन सबको मारा, लाखों लाखों लोगों को मराया, अपने मारा, भीम अर्जुन से मराया, परस्पर लड़कर चर्चा से मराया। इसलिए धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, तो धर्म की प्रतिष्ठा क्या हुई? एक तरह से तो भारतवर्ष उस समय से बर्बाद हो गया, नहीं बर्बाद नहीं हुए, दुष्ट लोग का संघात और धर्म के प्रवृत्ति वाले लोग अपना धर्म चले। तो ऊपर से देखने से मालूम होता है कि हमारा सर कुछ बर्बाद हो गया भारत, बाण विद्या चली गई, तो बाण विद्या की जरूरत क्या थी? अभी यदि संसार से एटम बम और नाइट्रोजन बम इत्यादि सब बर्बाद हो जाए, कहीं नष्ट कर दिए जाए तो अच्छा है, ऐसे दुष्ट लोग चले जाए, भगवान का भजन करने वाले रहे, वैसे भी व्यक्ति हो यही खर्च की। किंतु उन्होंने देखा अब हमारी लीला समाप्त करनी है, अब जो साधारण लोग हैं उनकी दृष्टि में हमारी लीला कैसे समाप्त हो, हमारे जो साथ में आए हैं परिकर वो गोलोक वृंदावन या ब्रज से या द्वारका से आए हैं, बैकुंठ से, ये तो अजर अमर है हमारे लिए नहीं। अब ऐसी लीला कोई दिखलानी चाहिए जो साधारण लोग समझे या लड़कर करते मरे, किंतु इसी लीला के माध्यम से वो लोग वृंदावन में चले गए, लोग समझ नहीं पाए, लोगों ने समझा कि लड़कर करते मरे। इसलिए अपनी योग माया का